canto 18 chapter 14.
Navam adhyay, adhyay 18, shlok 40. Sankhya 40.
Anuvad.
Sanskrit saying crazy. Sri Srimad A.C. Dr. Vedanta Swami Prabhupada ki dwara. Yaduhu
Uvacha
Uvacha
Na
Utsahe
Utsahe
Jarasa
Jarasa
Atum
Atum
Antara
Antara
Praptaya
Praptaya
Tava
Tava
Avidhitva Supam
Supam
Gramyam
Gramyam
Vaitrushnyam
Vaitrushnyam
Na
Na
Iti
Iti
Purushaha
Purushaha
Shri Yadur Uvacha
Shri Yadur Uvacha
Moksahe Jarasas Atum
Moksahe Jarasas Atum
Antara Avidhitva sukham ramyam
Avidhitva sukham ramyam
Vaitrushnyam Naiti purusham
Vaitrushnyam Naiti purusham
Shri Yadur Uvacha
Shri Yadur Uvacha
Sahe jarasasthatam
Sahe jarasasthatam
Andhara praptayatam Avidhitva sukham ramyam
Avidhitva sukham ramyam
Vaitrushnyam naiti purushah
Vaitrushnyam naiti purushah.
Thank you.
Yojo Yayati K Jish Putrate Uttardi. Uttardi. Javadi. Na utsahe. Jarasa.
Jarasa.
Ake burapese.
Ake burapese.
Atam rahe ane kele antara javanime praktaya svikakya hua tava anuvade apka, we can actually tunka. Tava means Bhavan, Bhavata. Anyway, Anuvade Apka. Avidhva,
Avidhva.
Vina Anubhav Kie.
Vina Anubhav Kie.
Sukham,
Sukham.
Sukh.
Sukh.
Ramyam,
Ramyam.
Bhutik Yad Sharir. Vaitrashnyam Bhotik Sukh Sevirakti
Bhotik Sukh Sevirakti
Na Nahi Iti Pratkarta Hum Purushaha Vyakti Anuvad Yadunai Uttar Diya. He Pitaji Yadyapi api tarun purush te kintu apne vridha vastra prapt kar li hai kintu mujhe aapka purapa tatha jar jarata tanik bhi manya nahi hai kyunki bhautik sukh ka bhog किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता. Bhotik bhog se virakti hi manav jivan ka charam lakshya hai. Isliye varnashram vyavastha atyanta vaigyanik hai.
भौतिक भोग से विरक्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है. इसीलिए वर्णाश्रम
सब अपना मोबाइल जाना सब हम किसी आज का विषय है भौतिक भोग से विरक्त हो मोबाइल मोबाइल का प्रेम से विरक्त होना चाहिए. आधा घंटा मोबाइल के बिना बात न करे महातपस्या जरा सा बंद कीजिए. मैं लंदन से आया हूँ आपको ये आदेश देने के लिए आपका मोबाइल बंद करो.
भौतिक भोग से विरक्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है. इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है. इसका लक्ष्य मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग किए बिना प्राप्त कर सकना असंभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्य मुखस्य, जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है उसे निष्किंचन होना चाहिए, अर्थात भौतिक भोग के सारे आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। ब्रह्मण्यु पशम आश्रयम, पूर्ण विरक्त हुए बिना ब्रह्म में या भक्ति में स्थिर नहीं हुआ जा सकता। ब्रह्म पद पर ही भक्ति की जा सकती है। अतएव जब तक मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भक्ति में नहीं लग सकता। अथवा दूसरे शब्दों में, भक्ति में संलग्न व्यक्ति पहले से ब्रह्म पद पर रहता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान गुणान समीप्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूरी तरह भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में पतित नहीं होता, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवत गीता 14:26। अतः जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। सामान्यतया जब तक भौतिक सुख का भोग ना कर ले, तब तक कोई वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए वर्णाश्रम क्रमशः उत्थान के लिए अवसर प्रदान करता है। महाराज ययाति के पुत्र यदु ने बतलाया कि वह अपनी जवानी त्याग पाने में असमर्थ है, क्योंकि वह इसका उपयोग भविष्य में संन्यास आश्रम प्राप्त करने के लिए करना चाहता है। महाराज यदु अपने भाइयों से भिन्न थे, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है, तुर्व सुशोचोदितः पित्रा द्रुव्युक्चानुश्चः भारत प्रत्याचक्षुर धर्मज्ञः। महाराज यदु के भाइयों ने अपने पिता के प्रस्ताव को मानने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे धर्म से भली भांति अवगत न थे। उन आदेशों को स्वीकार करना जो धर्म का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से पिता के आदेशों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः जब महाराज यदु के भाइयों ने अपने पिता के आदेश को नहीं माना तो यह सचमुच धर्म विरुद्ध था, किंतु महाराज यदु द्वारा निषेध धर्म सम्मत था। जैसा कि दशम स्कंध में कहा गया है, यदोश्च धर्मशीलस्य। महाराज यदु धर्म के सिद्धांतों से पूरी तरह अवगत थे। धर्म का चरम सिद्धांत भगवान की भक्ति में अपने को लगाना है। महाराज यदु स्वयं को भगवान की सेवा में लगाने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे, किंतु एक बाधा थी। जवानी में भौतिक इंद्रियों के भोगने की इच्छा होती है, और जब तक जवानी में इन इच्छाओं को पूरी तरह तुष्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक भगवान की सेवा करने में विघ्न उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। हमने सचमुच देखा है कि ऐसे अनेक सन्यासी जो अपरिपक्वावस्था में संन्यास ग्रहण करते हैं, अपनी इच्छाओं को तुष्ट न किए रहने के कारण विचलित होकर भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए सामान्य नियम यह है कि संन्यास के पूर्व गृहस्थ जीवन तथा वानप्रस्थ जीवन बिताया जाए और अंत में संन्यास ग्रहण करके भगवान की सेवा में संलग्न हुआ जाए। महाराज यदु अपने पिता के आदेश को मानने और वृद्धावस्था के बदले जवानी देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह जवानी उनके पिता लौटा देंगे। लेकिन इस आदान प्रदान से उनकी भक्ति में विलंब होता, अतः वे अपने पिता की वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वे निर्विघ्न स्वतंत्रता चाहते थे। साथ ही यदुवंशियों में ही भगवान कृष्ण को जन्म लेना था, और महाराज यदु उत्सुक थे कि भगवान का प्राकट्य यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र हो, इसलिए उन्होंने अपने पिता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर भी यह धर्म के विरुद्ध न था, क्योंकि यदु का उद्देश्य भगवान की सेवा करना था। क्योंकि यदु भगवान के आज्ञाकारी दास थे, इसलिए कृष्ण ने उनके वंश में जन्म लिया, जैसा कि कुंती की प्रार्थना से पुष्टि होती है, यदो प्रियस्यान बावे प्रियान बावे। कृष्ण को यदु अत्यंत प्रिय थे, अतएव वे यदु वंश में अवतार लेने के लिए उत्सुक थे। निष्कर्षतः महाराज यदु को अधर्म अधर्मज्ञ नहीं मानना चाहिए, जैसा कि अगले श्लोक में उनके भाइयों के लिए कहा गया है, वे यदु चार कुमारों चतुसन की भांति थे, जिन्होंने उत्तम कार्य के लिए अपने पिता ब्रह्मा के आदेशों को नहीं माना। क्योंकि चारों कुमार ब्रह्मचारी के रूप में भगवान की सेवा करना चाहते थे, अतएव उनके द्वारा पिता की आज्ञा को न मानना अधर्म नहीं था।
लोगों का रिंगटोन से हम समझ सकते हैं उनकी रुचि किसमें है। अगर श्रील प्रभुपाद का कीर्तन है हम समझ सकते हैं भक्त, और यदि फिल्मी गान है हम समझ सकते हैं कि शायद भक्त है, लेकिन इतनी सी रुचि नहीं है। जो भी रिंग टोन है आपका फोन का, जैसा उसको बंद करो। तो ये विषय से हम बहुत उपदेश मिल सकते हैं। ये विचित्र है कैसे है? यदु इनके पिताजी का आदेश पालन नहीं किया, स्वीकार किया, और उनके अन्य भाइयों ने अस्वीकार, अन्य भाइयों की पालन नहीं करना अधर्म था, और यदु राजा का पालन करना परम धर्म, दोनों अस्वीकार। तो अंदर क्या था जिससे अन्य भाइयों का अस्वीकार करना अधर्म था और यादव का अस्वीकार करना धर्म? तो अन्य भाइयों अस्वीकार किया क्योंकि उन्होंने सोचे कि हमें भौतिक भोग विलास करना है, वो हमारा जीवन का लक्ष्य है। और यादव भी ऐसा विचार के कि मुझे भौतिक सुख अनुभव करना है। दोनों का विचार एक ही था या दोनों का प्रस्ताव है, परंतु यादव भौतिक सुख अनुभव करना चाहते थे क्योंकि उनका चरम लक्ष्य था कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। और उन्होंने विचार किया कि यदि मैं भौतिक सुख का अनुभव नहीं करूंगा तो मेरी भक्ति में इंद्रियों का वेग से मेरी भक्ति तो पूरी नहीं हो सकती, और इसलिए भौतिक सुख का अनुभव करना चाहिए। याद हो तो वो एक उपदेश कि धर्म का विचार बहुत सूक्ष्म हो सकता है। महाभारत में ही ऐसे बहुत घटना थी जिसमें धर्म पालन करने से अधर्म होता और अधर्म पालन करने से धर्म होता। एक कहानी है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया, शायद आप सब अवगत हैं, कि एक ब्राह्मण एक संकल्प किया कि मेरे पूरी जीवन में मैं नित्य कभी भी नहीं कहूंगा, तो वो ब्राह्मण तो जंगल के पास रहते थे, घर तो जंगल के पास. तो एक बार एक आदमी आया था, वो बहुत भाई भी बोले कि मैं व्यापारी हूँ, मेरे पास बहुत सोना है और मेरे पीछे कुछ डाकत है, तो मेरे से वो सोना का चोरी करना चाहते, मैं कहाँ जाऊँ. वो ब्राह्मण वाले वो उस जंगल में जाओ, तो 5 मिनट के बाद तुरंत आया वो सब डाका गुंडा. वो ब्राह्मण से पूछ रहे थे क्या वो कोई आदमी यहाँ आया, यहाँ आया. तो वो व्यापारी है, उसके पास बहुत धन है जो हम चोरी करना चाहते. वो कहा गए, उस जंगल में गए, झूठ नहीं करते. तो सब गुंडा वो व्यापारी को मिल के उसका गला काट के सोना चोरी किया. और ऐसे पूरा जीवन में वो ब्राह्मण जो एक बार भी झूठ नहीं बोला. और उस समय झूठ नहीं बोलने से मृत्यु का समय नरक है. तो धर्म है झूठ नहीं बोलना, लेकिन उस अवस्था में झूठ बोलना धर्म होगा और झूठ नहीं बोलना अधर्म होगा. और महाभारत में ऐसे बहुत भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया वो कर्ण का वध करना, कारण लगे ये अधर्म है, मैं राक्षस नहीं हूँ, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शास्त्र नहीं है. और उस समय भगवान कृष्ण की वो द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का समय तुम्हारे धर्म का हाथ था. इत्यादि बहुत ऐसे, और कारण कुछ भी नहीं बोल सकते उसको मारा दो. तो ऐसे कैसे द्रोणाचार्य का वध था, अश्वत्थामा हता इति गाथा. और उससे वो हाथी ही जिसका नाम अश्वत्थामा था, तो युधिष्ठिर महाराज का गलत फहमी कि झूठ नहीं बोल, मुझे झूठ नहीं बोलना है, उसको समर्थन करने के पालन करने के लिए निराग से एक हाथी का वध करना. और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का व्रत जो भूमि से ऊपर चल रहे थे तो नीचे गए, उसका कारण क्या है, झूठ बल नहीं है. कारण है कि कृष्ण का आदेश पालन करने के लिए उत्साही नहीं थे, वही कारण. तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो शास्त्र में ये धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीत शास्त्र बन. परंतु ये सब समझने के लिए तो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं चले, जैसे ही धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र तो आजकल उसको न्याय बोलते, लॉ आईन कानून. परंतु धर्म तो अति सूक्ष्म हो सकता, चरम धर्म क्या है, चरम धर्म है कृष्णार्थे खेल चेष्ट, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना. तो कुछ लोग बोलते हैं Kiyo Krishnato Param Adharmata. Chorta, Makan Chorta. Gopi Vastra Haram. I say Bhagavan. O Christian, I say Prachar Karte. Hamara Jesus to Bahut Sach Admi. O Tumhara Krishna. Kuch Ram Bhakt bhi I say Bhakt. Hamara Ram, Maryada Purushottam. Tumhara Krishna. I say Vyakti. Aise log to nahi jante ki gopi vastra haran karne se Bhagavan Krishna param dham pradashanti ki bhakti mein bhakton pura prastut hona chahiye sab kuch karna Bhagavan ke liye to lajja jo nariyon ka Param Bhushan hai. To Krishna ki seva mein lajja nahi chahta. Besharam hona chahta. Krishna ki bhakti. O Gopi Anjo ho raat ke beech apna ghar chhod ke patiyon bachchon सब कुछ चार पे कृष्णा की वंशी ध्वनि सुन के बाद तो परम धार्मिक इससे परम धर्म नहीं है तो कैसे संभव है कृष्ण एक नारियों के लिए ही पति व्रत धर्म है नारियों के लिए ही तपस्या करने का जरूरत नहीं है तीर्थ यात्रा करने का जरूरत नहीं है स्तुति पाठ करने का जरूरत नहीं है एक धर्म पालन करने से उनका पूरा धर्म पालित होते वो पतिव्रत धर्म ये सभी शास्त्र और भगवान कृष्णा गोपियों को पति धामन लंगन कर तो कहा है धाम तो परम धर्म है जो और सब धर्म के अतीत है ये धर्म सर्व धामन परित्यज मामेकं शरणं तो इसका अर्थ क्या है वो सब माता जी तो स्त्री धर्म पालन नहीं करते पालन करना है और साथ साथ भक्ति भक्ति धर्म भी करना है तो ये सब विचार बहुत सूक्ष्म है और इसलिए ही हम कष्ट हम शिल प्रभुपाद अनुगामी है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में समूह सदस्य हमारे लिए ही धर्म समझने के लिए भक्ति समझने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो हम शास्त्र से ही समझते हैं जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं या शास्त्र विधि पुत्र गार्गते काम कार न सस्य विभावापति न सुखम न परावर्तनम् तस्मात् शास्त्रम् कार्य कार्य क्या का शास्त्र विधानम् कार्य कार्य गीता में श्री कृष्ण असुरों का कुचरित्र का वर्णन करने के पश्चात भगवान कृष्ण बोले कि जो लोग स्विच दस शास्त्र नियम पालन नहीं करते और केवल भौतिक काम के लिए सब कुछ करते हैं ऐसे लोग सुख सिद्धि और परम गति प्राप्त नहीं होता। इसलिए शास्त्र विधि समझना चाहिए और शास्त्र विधि पालन करके जीवन बीतना है। तो हमें शास्त्र पालन करना है और श्रील प्रभुपाद का आचरण उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में बहुत 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 विधि है। बहुत एक मराठी पंडित थे, उद्धर्म शास्त्र खान है, उनका नाम खान है। उद्धर्म शास्त्र जितने भी मानव समाज में अभी तक विराजमान है, तो सब संकलन करके अंग्रेजी में अनुवाद किया, बहुत पुस्तक ऐसे एक शब्द इतना सब धर्म शास्त्र, तो बहुत नियम। तो भक्ति शास्त्र में भी बहुत नियम है। तो हमें क्या पालन करना चाहिए और क्या नहीं, तो शास्त्र से समझना चाहिए, शील प्रभुपाद का चरित्र से समझना चाहिए और शील प्रभुपाद के आदेशों से। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, धर्म स्थापन हेतु साधु व्यवहार, माधव पूर्य आचरण सर्वधर्म सा। तो धर्म कैसे स्थापित होते हैं मानव समाज, साधु जनों का व्यवहार से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा माधवेन्द्रपुर जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम आचार्य है, वे जो कहते हैं वो उनके शिष्यों का धर्म है। इस बात में महाप्रभु इस प्रसंग में कि एक ब्रह्म मथुरावासी शनोय ब्रह्म जो ब्राह्मण को कुल नहीं वो नीच जाते ऐसे माना था, मतलब वो ब्राह्मण जाति तो श्रेष्ठ, तो ब्राह्मणों भी कुछ तारतम्य होते, उच्च ब्राह्मण मध्यम ब्राह्मण नीच ब्राह्मण, जितने भी मैं देखा था ऐसे देखते तो सब ब्राह्मण बहुत है। तो हमारी जाति के ब्राह्मण हम उच्च है और सब दूसरे नीच है, तो सब ऐसे है। लेकिन उस समय मथुरा में वो शनौरीय ब्राह्मण एक जाति ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों ब्राह्मण समाज में नीच ऐसे माना था, क्योंकि वे नीच जाति के लोग की पूजा विधि करते थे। और इसका कारण से चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी थे, तो सामाजिक व्यवहार के अनुसार तो चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी थे, तो ऐसे ब्राह्मण का घर में भिक्षा अर्थात भोजन लेना नहीं करते, क्योंकि सन्यासियों का एक नियम है कि केवल ब्राह्मणों के घर में भिक्षा ग्रहण करते हैं और नीच ब्राह्मणों के घर में नहीं। परंतु चैतन्य महाप्रभु कि चूंकि माधवेन्द्रपुरी वो ब्राह्मण का घर में भिक्षु लिया है, उसलिए मुझे भी लेना है। और सब दूसरे लोग जो चर्चा करेंगे, मंतव्य करेंगे, निंदा करेंगे, तो ऐसा ऐसा बोल सकते. लेकिन चूंकि मेरे गुरु परम गुरु माधवेंद्रपुरी ऐसे किए हैं, तो मुझे भी करना. तो ऐसे ही धर्म हमें भक्ति में हमें क्या करना है. तो इस आधुनिक युग में हमें श्रील प्रभुपाद का आदर्श आचरण से ही समझना चाहिए. परंतु उसमें भी और कुछ महत्वपूर्ण विचार है कि श्रील प्रभुपाद विशेषकर असंस्कृत और क्रियाहीन लोग के बीच में प्रचार किया. प्रभुपाद के शिष्यों अधिकांश शिष्यों तो म्लेच्छ जाति के, हम नहीं बोलते कि वे म्लेच्छ हो. प्रभुपाद के सब प्रभुपाद के कृपा पात्र, परंतु वैदिक संस्कृति सदाचार ये सब के बारे में प्रभुपाद के शिष्यों विदेशी शिष्यों का ज्ञान नहीं था. और इसलिए श्रील प्रभुपाद विशेषकर पाश्चात्य देशों में उनका प्रचार का आरंभ है, तो नियम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं. तो यदि हम विचार करते हैं कि प्रभुपाद जैसे पाश्चात्य देशों में बहुत एडजस्ट किया है, और इसलिए हमें वो सब भक्ति नियम पालन करने का जरूरत नहीं है, तो वो भी भूल हो. श्रील प्रभुपाद उनके ही भारतीय शिष्य, एक्चुअली भारतीय शिष्य और भारतीय शिष्य, ऐसे विचार इतना सा नहीं करना चाहिए. क्योंकि जो भक्ति कहते हैं वो सब भौतिक विचार से ही अतीत होता है. चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नीच जाति नाहे कृष्ण भजन है अजो, शकुन ब्राह्मण नाहे भजन है जो, जे भजे से बड़ो अभक्त ही न चा, कृष्ण भजन है नाहिक जात कुला भी विचार. चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो नीच जाति है तो भक्ति में उनका कुछ बाधा नहीं है. नीच जाति होने से अयोग्य नहीं है भक्ति के लिए, और केवल उच्च ब्राह्मण कुल भूत होने से कोई योग्य नहीं नहीं भक्ति के लिए. जो वास्तव में भक्ति कहते हैं तो वो योग्य है भक्ति के लिए, वे श्रेष्ठ मानव समाज. जात कुल आदि विचार नहीं है भक्ति में. तो ये पूर्ण आध्यात्मिक विचार है. और कुछ व्यवहारिक विचार में कुछ भेद भी है, सांस्कृतिक भेद. केवल भारतीय और भारतीय नहीं है, तो भारतीय लोग में कुछ भेद होते भक्तों में भी. गुजराती भक्त, कन्नड़ भक्त, बंगाली भक्त, जैसे कौन सा स्टाइल प्रसाद अच्छा लगते हैं तो अलग होते हैं. वो तमिल जो बहुत इमली वो प्रसाद में लेते हैं, तो शायद गुजराती अंदाज तो इतने से अच्छा ना लगते, जिसमें हर एक आइटम में गुड़ या सार का दाना है. तो सब भक्त है, परंतु भौतिक दृष्टि में कुछ भेद भी है। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद उनके कुछ भारतीय शिष्यों को बताए कि भक्तों जो विदेश से आया है उनसे भक्ति सिद्धांत सीख सकते, परंतु आचरण व्यवहार वो जो आपके पिता माता तुमको सिखाए वो पालन करो। क्योंकि दो प्रकार की परंपरा है, एक है पूर्ण आध्यात्मिक और इसलिए आप जो इस जन्म में भारत भूमि ते हो मनुष्य जन्म जा, आप जो भारत से जन्म लिया मनुष्य शरीर प्राप्त किया है इस बार आप मुझसे भक्ति कथा सुन रहे हैं, ये पूरा आध्यात्मिक विचार। क्योंकि पूर्व काल में भारतीय लोग तो कामना भी नहीं कर सकते कि हम भगवत कथा विदेशी लोगों से सुन, क्योंकि आप नहीं सोचते कि मैं विदेशी हूं क्या, आप भारतीय हैं इसलिए आप सुनते हैं। तो ये आध्यात्मिक विचार है, आध्यात्मिक परंपरा। और दूसरा है शुक्र परंपरा, जिसमें से संस्कृति प्रशिक्षण होते हैं। और इसलिए अर्जुन भगवद गीता में अर्जुन की आपत्ति थी कि यदि हम तो सब राजा को मार देंगे तो नारियों आरक्षित होंगे, नारियों प्रदूषित होंगे, उससे वर्ण संकरा। इसका मतलब कि विशेषकर नारियों में से वो संस्कृति शिक्षण होते हैं आजकल नहीं, क्योंकि नारियों तो अभी घर वाली नहीं है, सब ऑफिस वाले बन गए और सबके गुरु पिता माता तो गुरु नहीं है, गुरु है टीवी और इंटरनेट और स्कूल में बड़े बड़े स्कूल बनाते हैं और सिखाते हैं कि तुम्हारा पिता का पिता का पिता का पिता का पिता बंदर छोटे परंपरा में और लोग सीखते थे कि मेरे पिता के पिता के पिता कश्यप थे या गौतम थे, और आजकल सिखाते हैं तुम्हारे पिता बंदर मुनि थे, बंदर ऋषि। ये विचित्र है, तो जमाना बहुत विचित्र है। एक्चुअली बहुत भारतीय है तो विदेशी भक्तों की बात सुनते हैं, क्योंकि उनका आदत है वो विदेशी लोग जो भी बोलते हैं उसको शास्त्र से मान लिया ऐसे उसमें ऐसे। और उसमें प्रभुपाद विदेश से कुछ बात लाए है, क्योंकि प्रभुपाद अमेरिका जाने के पहले भारत में बहुत प्रयास किए भक्ति प्रचार करने, और लोग तो सही नहीं उस समय पंडित नेहरू का प्रभाव बहुत था। पंडित नेहरू ऐसे पंडित कैसे एनीवे ये पॉलिटिकल बात नहीं है, और प्रभुपाद से सुने कि पंडित नेहरू का प्रचार था कि ज्यादा धर्म पालन करने से भारत का इतना सब नुकसान हो गया। देखो ये सब पाश्चात्य देश तो कितना महान है, तो हमें पाश्चात्य जैसे होना चाहिए। ये सब मंदिर ये सब जरूरत है, मंदिर तोड़ दो, फैक्ट्री बनाओ, ये आधुनिक भारत के नया मंदिर है फैक्ट्री। वो लोग सही नहीं थे, क्योंकि लोग सोचते थे कि पाश्चात्य देशों की प्रगति वही प्रगति है और ये सब आध्यात्मिक प्रगति ये सब क्या है, बकवास है। तो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश जाकर कुछ भक्त बन है तो भारत वापस लाए। देखो विदेशी लोग हरे कृष्ण भक्त, ओ विदेशी लोग हरे कृष्ण भक्त, हमें भी हरे कृष्ण कहना चाहिए। साइकोलॉजी श्रील प्रभुपाद एक कहानी सच है कि नहीं मुझे लगता है सच नहीं, लेकिन इस बुद्धि की विदेशी श्रेष्ठ है उसको उसको प्रकट करना एक कहानी है कि एक आदमी दूसरे आदमी को बोला आमंत्रण भोजन लेने के लिए, तो उसको मांसाहारी दो, तो आदमी को मांस दे दो, किस कैसे मांस है इसका पूर्ण अलग होता है, ये खुद का मांस क्या मुझे क्या नहीं नहीं ये कुत्ता तो गवर्नर साहेब अंग्रेज उसको मारा। ओ धर्म क्या है, ये विषय धर्म देश विदेश ये सब विचार के अधीन। धर्म है कृष्णार्थी के लक्ष्य, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो याद उपारम भाव आते और उनकी इच्छा थी कृष्ण सेवा, और इसलिए ही भौतिक सुख अनुभव करना विचित्र है। मैं कृष्ण भक्ति करना चाहता हूँ इसलिए मुझे भौतिक सुख अनुभव करना चाहता हूँ, विचित्र है ना। परंतु यादव महाराज का उद्देश्य थोड़ा सा सुख अनुभव करके उसको सब त्याग कर, जिससे मेरी भक्ति बहुत जुड़ा हो, इससे ऐसे तो सब लोग ऐसे कर सकते कि नहीं मुझे मालूम। अगर कुछ भक्त बोलते हैं कि मुझे कुछ सुख अनुभव करना है जिससे मेरी भक्ति जुड़ता ज्यादा हो, मालूम नहीं क्योंकि इंद्रिय सुख जो मायक है, तो यदि हम करेंगे तो माया हमको और ज्यादा खींचते, तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म की और वर्णाश्रम धर्म है गृहस्थ आश्रम में इंद्रिय सुख भोग करना है परंतु नियम से। केवल इंद्रिय सुख भोग करने नहीं, थोड़ा सा है और ज्यादा भक्ति करना है। ऐसा नहीं है कि मैं गृहस्थ हूं तो इससे सब नियम चढ़ू, ऐसे नहीं। गृहस्थ आश्रम है, यदि वो गृहस्थ आश्रम होगा तो वो गृहस्थ आश्रम में तो थोड़ा सा इंद्रिय सुख भोग करे नियम के अनुसार। और साथ साथ भगवत कथा सुनने हैं, भगवान की भक्ति करना है, जिससे वो इंद्रिय सुख भोगने से गृहस्थों तो तुरंत इंद्रिय सुख से अनासक्त होंगे और योग्य होंगे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने, विरक्त। हरे कृष्ण, यादव महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अगर किसी का प्रश्न हो जैसा पूछे।
आप बता रहे थे कि युधिष्ठिर का वध इसलिए नीचे आया कि उन्होंने झूठ बोलने में हिचकिचाए थे, लेकिन हम देखते हैं कि अर्जुन जो भगवान के ज्यादा उनके करीब के भक्त थे, उनका रथ तो हवा में नहीं चलता था, इसका कारण क्या था?
उनका रथ
हवा में नहीं चलता था जबकि और युधिष्ठिर का था।
मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, ये प्रश्न है, सब सुने सुन रहे प्रश्न कि अर्जुन जो कृष्ण के अत्यंत प्रिय है युधिष्ठिर से, ऐसा बहुत है तो सब सब पांच पांडव तो कृष्ण के अति प्रिय है और अर्जुन कृष्ण भगवान के विशेष मित्र है, तो अर्जुन के रथ ऊपर भूमि की ऊपर नहीं चलते क्यों? एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, और अन्य अन्य भक्तों को अन्य अन्य आशीष लेते हैं, विशेषकर क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का सुनाम था कि वो परम धार्मिक है, तो कभी भी कुछ आधार नहीं करते हैं, तो इसलिए देवता जैसे वो सुविधा में। तो क्षत्रिय धर्म में झूठ बोलना चाहते हैं, शराब पीना, मांसाहार, ये सब हो सकते हैं, परंतु युधिष्ठिर महाराज तो वे सब नहीं किए। महाभारत में आप अनुसंधान करो कैसे युधिष्ठिर महाराज को आशीष मिला, कोई जानते हैं? किसी का देवता का आशीर्वाद क्या? मुझे नाम, यदि हम महाभारत की चर्चा करेंगे तो बहुत प्रश्न उठ सकते। भक्तों में हर एक केंद्र एक महाभारत का एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत कहानियां है, बहुत जटिल है, एक कहानी में एक दूसरे कहानी है, वो कहानी में और भी दूसरे, उसमें और भी दूसरे है, फिर हम दो जाते ही तो पहला कहानी क्या व्यासदेव महाभारत की रचना की, क्योंकि Shudra Bija Bandhanam Traina Veda Gochar. Sri Shudra Brahma Bandhu Kaliyoke Loka Yoga Nehe Ved Shuti Kapat Kandhe. Lekin Mahabharat bhi isko bhi samajhna aaj kal hamare liye itna aasan nahi hai.
You must be prepared while making propaganda. explore this Buddha's, that is the knowledge of the sandwich of Krishna. Don't remain foolish. Wherever there is required, fight with the Buddha's and tell them rightly, straightforward, that you are Buddha.
One speaking strongly in the Srila Prabhupada service is a book that I put together to examine how Srila Prabhupada spoke strongly and how he wanted his disciples to do so also. Strongly means clearly presenting the philosophy of Bhagavad Gita, Krishna's instructions, to whomever he met. Without going this way, that way, trying to be polite. Of course, it's not the Srila Prabhupada's being polite, but his whole point was to communicate to people the message of Bhagavad Gita. And often, in such a direct manner that people might have got it better than in some cases they did get it done.
Krishna's brain, Krishna's speaking, is the disaster to the order of the family. Just like the owl. Owl will never open the eyes to see that there is sunlight. You know the owl. All I do is say, Mr. Owl, please open your eyes to see the sun. No, there is no sun. It is our secret. So you have to open, find him his out. He must be very strong, especially in this country. We have to fight with the out. And we have to open their eyes by force. With machine. This is going. So, this is Prabhupada says, one man is a fight against all the out. The Ruskin means the Mahavadi, Gandhi, Gandhi, Yogi, all the Ruskins.
I made this joke because nowadays in our International Society of Christian Consciousness, this kind of speaking is often considered improper, and there's preaching against strongly clear preaching, and much of what goes on in the name of preaching is actually avoiding the real message of Bhagavad Gita. So, you may wonder why it's a whole book maybe about that. But because there are various arguments that, well, for instance, Prabhupada was a pure, he could do so, we're not pure, we can't do so, that we have to do it gradually and all this. So it's all examined in some detail. There are many quotes, more than 500 quotes total, including from Srila Prabhupada and from previous acharyas also. And examining all these points in some detail. Are we interested in public opinion? To what extent we should be interested in public opinion? To what extent we should take the risk and speak straightforwardly? It's not just one-sided. Examines also, there are some instances where we should be particularly cautious. For instance, if we're in a country where the government is very much antagonistic toward devotees, so in this way the whole subject is dealt with in detail.
Satyam priyam, priyam priyam, maam priyam, satyam apriyam. It is social convention that if you want to speak truth, you speak truth very plain, and don't speak unpalatable truth. But we are not meant for that purpose, social convention. We are teachers, we are servants of God, we must speak the real truth. You may like it or may not like it. You want to stop all this aspect, that you are jealous. You may not have a benefit. take you. But if you can bear one man into Krishna consciousness, we can do tremendous work. That is all. Don't fall down. You will become Krishna consciousness, the whole world will be yours. Especially addressing chastisement of the enemy. There is no excuse. You must be chastised. Not that because I become Krishna consciousness, I'll be very humble. You must be humble. But in me, if there is me, you shall be wonderful. There is Krishna in fact.
Especially for those devotees who do want to speak straightforwardly and clearly and present Krishna consciousness as it is, this book will be especially appreciated by them to offer evidence to those who will preach strongly against preaching strongly. And unfortunately, that is going on with some devotees in our movement. The only thing they preach strongly about is don't preach strongly. So, Srila Prabhupada preached strongly and clearly, and he wanted his followers to do so. That is the theme of this book. Please have a look at it and try to understand what this Srila Prabhupada's actual mission, his rule, how he presented Krishna consciousness in this book. There's some light on that. Like a major aspect of Srila Prabhupada's preaching, which we don't hear much about nowadays. Hare
Krishna. In the Hebrew, a man is wise in my tongue until he gets the heart and blessed. Now, what's that? Strength is good enough. We can prove that to us. I'm not speaking. Krishna is speaking. Now, Krishna said in the Bhagavad Gita, Navan Vishnudanam Mura. Mura means us. So if I'm repeating Krishna's word, anyone who does not surrender unto Krishna is rested. So we can quote from Bhagavad Gita. If somebody remains scared, so we can really say that I'm not speaking. It is said in the Bhagavad Gita, you just in line with faith against Bhagavad Gita. Why are you not traveling? If you are really Krishna conscious, then our business is to repeat the words of Krishna. That's all. What is the difference between a Krishna's representative and non-Krishna? The representative of Krishna will simply repeat what Krishna says. That's all. Give me that. It doesn't require much qualification. You simply repeat with calm conviction.
तमाशा करते महाराज आप ऐसा बोले कि अगली बार आगे पूरा मुझे तैयार ही हुआ वाड़े वो विशेष शक्ति है हम आशा करते हैं कि जो नृत्य है पढ़ के हम अपना उसी में और सीरियस ऐसा होता है करते करते भक्ति जो है एक धार्मिक हो जाता है एक रिचुअल हो जाता है लेकिन उनकी वाणी सुन के और उनकी कथा को पढ़ के ऐसा होता है कि हम लोग वापस ताज हो जाते हैं सीरियस हो जाते हैं जो शुरुआत है भक्ति में